श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्यवचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, आप सबको मेरा मसीही नमस्कार मिले। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल ही होंगे। फिर से हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम जीवित परमेश्वर के वचनों में से सीखें। प्रिय मित्र, पिछले अध्ययन में हमने लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय और उसके 15 से 44 पद का अध्ययन किया था, और इसमें हमने पेंतेकोस्त का पवित्र समय, नरसिंह का पवित्र समय, प्रायश्चित के महीने का दिन का पवित्र समय और झोपड़ी के पवित्र समय के विषय में देखा था। आज हम लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 24 अध्याय का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यहाँ पर हम इस अध्ययन में थोड़ा सा इस संदर्भ से हट रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आदेश देता है कि पवित्र दीपकों को किस प्रकार दीवट पर सजाया जाए और जलाया जाए, और भेंट की रोटियां तैयार करके प्रति विश्राम दिवस यहोवा के सम्मुख लोबान के साथ रखी जाए। अब यदि इस निंदा की बात प्रकाश में आए तो उन्हें क्या करना चाहिए था? देखिए यहोवा क्या कहता है। हमारा आज का विषय तीन मुख्य बिंदुओं में विभाजित है: दीवटों पर दीपक, मेज पर रोटियां, ईश्वर निंदा का दंड। हमारा पिछला अध्याय झोपड़ियों के पर्व के उल्लेख से समाप्त हुआ था और 25वां अध्याय विश्राम वर्ष से आरंभ होता है, और यहाँ अकस्मात ही अध्याय 24 में पवित्र दीपकों, भेंट की रोटी और ईश निंदा आदि की चर्चा करने लगता है। आपको आश्चर्य होगा, परंतु यह पवित्र आत्मा की विधि है। गिनती की पुस्तक 8 अध्याय उसके 4 पद में हम देखेंगे कि प्रधानों की भेंट और लेवियों के शुद्धिकरण के मध्य संक्षेप में दीपकों के जलाए जाने की विधि का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार में इसका उद्देश्य यह सिखाना है कि जो भी कार्य वहां किया जाए वह पवित्र आत्मा के प्रकाशन और पथ प्रदर्शन में हो। पर्वों का मनाया जाना, विश्राम वर्ष और जुबली वर्ष पवित्र आत्मा की सहभागिता और मसीह के सामर्थ्य में मनाए जाएं, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ व्यवहारिक बातें हैं जिन्हें अनदेखा न किया जाए। इसराइल की प्रजा को दीपकों के लिए तेल और रोटी के लिए मैदा लाना था, अर्थात परमेश्वर ने उन्हें तंबू की आराधना और व्यवस्था में सहभागी बनाया था। परमेश्वर चमत्कार करके तेल, मैदा, मेज और दीवट की व्यवस्था कर सकता था, परंतु वह चाहता था कि उसके लोग उसमें सक्रिय सहभागी हों। मित्र, परमेश्वर के वचन को फैलाने के संबंध में मेरी भावनाएं भी ऐसी ही हैं। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया में कहीं न कहीं ऐसा अवसर होता है कि आप प्रभु के कार्य में सहभागी हो जाएं। आप अपनी आंखें खुली रखें तो निश्चय ही आपको कोई न कोई कार्य ऐसा दिखाई देगा जिसे आप कर पाएंगे। मुझे स्मरण है कि एक बार मैं लड़कों के दल का बाइबल अध्ययन करा रहा था और मुझे संदेह है कि उन्होंने कोई भला काम किया हो। उन्होंने मुझे तो अस्पताल ही पहुंचा दिया होता। मैं उनके साथ कठोर व्यवहार करने पर विवश था, और एक रात हमारी कलीसिया के दो पुरुष वहां आए तो उन्हें पता चला कि उन लड़कों के साथ मुझे कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः उन्होंने स्वेच्छा से मेरी सहायता करने का विचार किया। जब मैं बाइबल अध्ययन करवाता था तब उन लड़कों के साथ उनका बैठना एक बड़ी सहायता सिद्ध हुई। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे सब परमेश्वर के वचन से प्रीति निभाते हैं। उन्हें मनुष्यों में सुसमाचार पहुंचाने के निमित्त सहभागी होना है। परमेश्वर कहता है, तुम तेल ले आना, तुम मैदा ले आना। दीवट का महत्व भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण मिलाप वाले तंबू में यह संभवतः मसीह का सर्वशुद्ध एवं अनुपम चित्रण है। दीवट परिशुद्ध होने के साथ साथ सोने का था, और अखरोट की एक ही शाखा से निकलती हुई 7 डालियों के रूप में अति सुंदर रूप में ढाला गया था। मित्र, दीवट की दीपकों का नित्य जलते रहने का उत्तरदायित्व एकमात्र हारून को था, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पाते हैं। हमारे लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है कि हम समझे कि आज ये दीपक हमारे महान महायाजक के हाथों में है। मसीह यीशु ने कहा कि वह जगत की ज्योति है। इससे पूर्व कि वह स्वर्ग में गया, उसने अपनों से कहा कि उन्हें जगत की ज्योति बने रहना है। पौलुस भी यही कहता है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में हम इसे पाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 और 2 अध्याय में हमारा महान महायाजक प्रभु यीशु मसीह आज हमें प्रज्वलित रखने के लिए दीवटों के मध्य विचरण करता रहता है। वह तेल डालता है जो पवित्र आत्मा की भरपूरी है। वह बत्तियों की काट छाट करता है कि ज्योति अधिक प्रकाशमान हो। वह दीपक को हटा भी देता है यदि जलता ना हो। यह वह पाप है जिसका फल मृत्यु है, जैसा यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है। अतः इस भाग में दीवट और रोटियों का अकस्मात ही उल्लेख बीच में आ जाना संदर्भ के बाहर नहीं है। मिस्र से निकल आने वाले इसराइल वंशियों में कुछ मिश्रित मनुष्य भी थे, जिनके कारण आगे चलकर सामुदायिक व्यवस्था में परेशानियां उत्पन्न हुई थी। यह दूसरी घटना है जब किसी मिश्रित मनुष्य के कारण व्यवस्था का उल्लंघन किया गया था। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये मिश्रित व्यक्ति वे लोग हैं जो इसराइली और मिस्र के वंशज के मिलावट से उत्पन्न हुए थे, और उनके मध्य एक पुरुष था जिसकी माता तो इसराइल वंशी थी परंतु पिता मिस्री था। यह पुरुष उन विश्वासियों का प्रतीक है जो संसार और परमेश्वर दोनों की सेवा में बराबर बटे हुए हैं। आइए अब हम इस अध्याय की रूपरेखा को देखें। पहला, सोने की दीवट के लिए जैतून का तेल, पद 1 से 4। दूसरा, रोटियों के लिए मैदा, पद 5 से 9। तीसरा, ईश्वर निंदा का मृत्यु दंड, पद 10 से 23। अब हम देखते हैं सोने की दीवट के लिए जैतून का तेल। आइए हम लय व्यवस्था की पुस्तक 24 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। प्रिय मित्र, इसराइल की प्रजा को दीपकों के लिए तेल की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि दीपकों को दिन रात जलते रहना था, इसलिए यह काम आसान नहीं था। इस व्यवस्था के कारण प्रत्येक इसराइलियों में और लेवी वंश में मिलाप वाले तंबू की सेवा के प्रति रुचि जागृत थी। जैतून का तेल परिशुद्ध होना था, उसमें अशुद्धता का एक भी कण नहीं होना था। उच्च कोटि की संसाधन द्वारा सर्वोत्तम उपद्रव युक्त तेल तैयार किया जाना था। क्यों? क्योंकि तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। अब हम लय व्यवस्था 24 उसके 3 और 4 पद में आगे पढ़ते हैं। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। प्रिय मित्र, जब तक मिलाप वाला तंबू खड़ा रहेगा तब तक दीपक दिन रात जलते रहेंगे। जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तब दीपक जलाए नहीं जाते थे। यहां हम देखते हैं कि दीपकों की देखरेख का कार्य केवल हारून के उत्तरदायित्व में था। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और जब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। आज प्रभु यीशु मसीह दीपकों के मध्य विचरण कर रहा है। वह हमारा महान महायाजक है। वह हमारे मन में अंतर्वास करता है, अतः वह इन दीपकों की बत्तियां काटता छांटता रहता है। कभी कभी उसे किसी दीपक को फूंक कर बुझाना भी पड़ता है, क्योंकि वह धुआं देने लगता है। अब आइए आगे देखते हैं, मेज की रोटी के लिए मैदा। लय व्यवस्था की पुस्तक 24 अध्याय उसके 5 से 7 पद में हम पढ़ते हैं। लिखा है, जब तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, और प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 अंश मैदा हो, तब उनको 2 पाती करके एक एक पाती में 6-6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पाती पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाला और वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। मित्र, मैदा और तेल दोनों की ही व्यवस्था प्रजा को करनी थी। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है तो रोटी मसीह का प्रतीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 35 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। बाइबल में मैदा लिखा हुआ है, परंतु वह गेहूं का शुद्ध एवं महीन आटा होता है, और लोबान वनस्पति से प्राप्त एक प्रकार का रस था। ये दोनों वस्तुएं प्रजा को उपलब्ध करवानी थी। रोटी ईश्वर का प्रतीक है और लोबान मसीह के मनुष्यत्व का सौरभ है। हमला व्यवस्था 24 के 8 और 9 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इसराइलियों की ओर से हुआ करे और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। मित्र, रोटियां एक सप्ताह मेज पर रखनी थी और प्रति शब्द दिवस ताजी रोटियां रखी जानी थी। पुरानी रोटियां हारून और उसके पुत्रों द्वारा खाई जानी थी। उन्हें रोटियां केवल पवित्र स्थान में ही खानी थी और राजा दाऊद और उसके साथी जंगल में जब भूखे थे तब याजक अहिमेलेक ने उन्हें खाने के लिए यही रोटियां दी थी। पहला सामुएल की पुस्तक 21 अध्याय उसके 4 से 6 पद में हम पाते हैं, यीशु के शिष्य शब्द के दिन गेहूं की बालियां खा रहे थे, जिस पर रूढ़िवादियों ने आपत्ति प्रकट की, तो यीशु ने यही उदाहरण उन्हें भी दिया था, जिसे हम मत्तियाह सुसमाचार 12 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पाते हैं। यूहन्ना 6 के 51 में भी हम रोटी और ज्योति मसीह का घोतक के रूप में पाते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। और तब हम और आगे पाते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में पाते हैं। यदि हमें प्रभु की सेवा करनी है तो हमें उस पर विश्वास योग्य होना है और हम उसके लिए जो कुछ भी करते हैं उसकी ज्योति और पवित्र आत्मा में करना है। ईश्वर निंदा के लिए मृत्यु दंड। आगे हम देखते हैं, लय व्यवस्था की पुस्तक में ऐसे दो ही घटनाओं का उल्लेख है। लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 10 में नादाब और एलीहू और दूसरी यह घटना है। इस घटना का यहाँ उल्लेख किया जाना सर्वथा संदर्भ रहित है, परंतु यह एक अटल सत्य भी है कि परमेश्वर को निंदा स्वीकार नहीं है। इसी कारण वह यह सबक हमें सिखा रहा है। लय व्यवस्था की पुस्तक 24 अध्याय उसके 10 और 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उन दिनों में किसी इसराइली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था इसराइलियों के बीच चला गया और वह इसराइली स्त्री का बेटा और एक इसराइली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे और वह इसराइली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके श्राप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले आए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद कर दिया जिसे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। मित्र, यह युवक दान गोत्र की महिला और मिस्री पुरुष के मिलन द्वारा उत्पन्न संतान था। इसराइल द्वारा मिस्र से निर्गमन करते समय उनके साथ अन्य जाति भी थे जो उनमें घुल मिल गए थे और हम देखेंगे कि इनके कारण समुदाय की व्यवस्था में अराजकता उत्पन्न हुई। वे कुड़कुड़ाते थे और कलह भी करते थे। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। मित्रों, इन युवकों की समस्या का कारण था उनके परिवार का टूटना, क्योंकि इनकी माताएं इसराइल वंश की होने के कारण प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए निकल पड़ी थी, जबकि पिता मिस्री होने के कारण मिस्र देश में ही रह गए थे। यही कारण है कि परमेश्वर ने उस समय और आज भी अंतर जातीय विवाह का अनुमोदन नहीं किया है। इसका वास्तविक संबंध जाति प्रथा से नहीं है। अतः परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक विश्वासी को किसी अविश्वासी से विवाह करना उचित नहीं है। यदि परमेश्वर आदेश न देता तो मैं कभी भी इसे अनुचित नहीं समझता। इस मिश्रित युवक की समस्या थी कि माँ की जीवन शैली अपनाए या पिता की। अतः अंतिम परिणाम यह होता था कि ऐसी संतान कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती थी और वे कोई न कोई निर्णय ले लेते थे, परंतु उनके मन में एक प्रश्न सदा बना रहता था, मैं विपरीत निर्णय लेकर पिता के साथ ही रहता तो अच्छा होता। इस प्रकार इन मनुष्यों के मन में एक सदाकालीन संदिग्धता उपस्थित रहती थी। पहले तो मिस्र से पलायन एक कठिन निर्णय था, फिर उनके विचार मिस्र में ही अवस्थित थे और विषम परिस्थितियों में वे पहले जन होते थे जो शिकायत करते थे। मेरे मित्र, आज कलीसिया में भी ऐसी दुविधा युक्त मनुष्य हैं। उनका एक पांव कलीसिया में है तो दूसरा संसार में। ऐसे ही मनुष्य प्रायः उपद्रव खड़ा करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उपद्रवी मनुष्य क्या वास्तव में उद्धार प्राप्त मनुष्य है। मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला मनुष्य सुसमाचार प्रचार में बाधा कैसे उत्पन्न कर सकता है। उनसे आशा तो यही की जाती है कि वे कहें, मेरे भाई प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि वचन आपके द्वारा बहुत ऐसे फैल जाए। अब यह युवक किसी से झगड़ा कर बैठा, हम समझ सकते हैं कि झगड़े का आरंभ कैसे हुआ होगा। दान के गोत्र में उसका वैधानिक स्थान नहीं था, परंतु वह समुदाय का सदस्य अवश्य था। झगड़ा आरंभ हो जाने पर उसने यहोवा का नाम व्यर्थ में लेना आरंभ कर दिया, जबकि इसराइल में परमेश्वर का नाम इतना पवित्र माना जाता था कि उसका उच्चारण भी वर्जित था। और यही कारण है कि आज भी यहोवा का नाम सही उच्चारण से नहीं लिया जाता है, अर्थात उसका उच्चारण अज्ञात है। परंतु इस निंदक ने वह नाम लिया, वरन अशिष्ट रूप से लिया। मुझे मेरे एक मित्र ने क्लब में आमंत्रित किया। मेरे साथ एक व्यक्ति बैठा था जिसने वार्तालाप के मध्य परमेश्वर का नाम इतनी बार लिया जितनी बार मैंने अपने किसी उपदेश में नहीं लिया था। परंतु वह उस श्रद्धा से परमेश्वर का नाम नहीं ले रहा था जिस श्रद्धा से मैं अपने उपदेश में वह नाम लेता हूँ। वह वास्तव में निंदा कर रहा था, और परमेश्वर की दृष्टि में इस व्यक्ति का स्थान वही है जो इसराइल के मध्य उपस्थित उस युवक का था। मित्र, हम लाइव व्यवस्था की पुस्तक 24 अध्याय उसके 13 से 16 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर लिया ले आओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके, तब सारी मंडली के लोग उसको पत्थरवाह करें। और तू इसराइलियों से कह कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को श्राप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पत्थरवाह करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। मित्र, परमेश्वर ने दोषी के लिए न्याय सुनाया, उसका दंड था पत्थरवाह करके उसे मार डाला जाए। अपराध की गंभीरता परमेश्वर द्वारा दिए गए दंड से प्रकट होती है। वे सब जिन्होंने उसे निंदा करते सुना था उसके सिर पर हाथ रखे, जिसका अर्थ था कि अपराध को उसके सिर पर मढ़ना। परमेश्वर के नाम की निंदा करना दंडनीय अपराध था, अर्थात मृत्यु दंड, और दंड देने वाला इसराइल वंशी तथा अन्य सब लोग थे। लय व्यवस्था 24 उसके 17 से 22 पद में लिखा है, फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला जाए, और जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी की संति प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने की संति अंग भंग किया जाए, आंख की संति आंख, दांत की संति दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाया जाए, और पशु का मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य का मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। दंड देने में हमारी व्यवस्था दया का प्रदर्शन करती है। यहाँ हत्या के दंड का उल्लेख किया गया है। युद्ध के विपक्षी झंडे निकालते हैं जिन पर लिखा होता है, तू हत्या मत करना। मुझे वह झंडा अभी भी देखना है जिस पर लिखा हो, जो हत्या करे वह निश्चय ही मार डाला जाए। प्रिय मित्र, यहाँ एक स्थापित नियम है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यह दंड वास्तविक था, एक ऐसा नियम जो इसराइलियों और अन्य जातियों दोनों के लिए ही था। लय व्यवस्था 24 उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, और मूसा ने इसराइलियों को यही समझाया, तब उन्होंने उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया, और इसराइलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। प्रिय मित्र, हम देखते हैं कि यहाँ एक महान नैतिक नियम निहित है। हमारे प्रभु परमेश्वर का नाम पवित्र है और उसे आरक्षित रखना है। निंदा एक गहन अपराध है, और मानव जाति भी पवित्र है और उसकी रक्षा करना आवश्यक है। परमेश्वर किसी भी संपदा की सुरक्षा की व्यवस्था भी करता है। परमेश्वर अपने व्यवहार में धर्मी है, हम परमेश्वर के समक्ष दोषी हैं। जो मनुष्य पाप करे उसे मृत्यु दंड दिया जाए, परंतु मसीह ने हमारा मृत्यु दंड अपने ऊपर ले लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, और यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 4-6 पद में हम इसे पाते हैं। प्रिय मित्र, यह सच है कि प्रभु यीशु ने हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि वह हमें धर्मी ठहरा सके, और हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले ली ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चित तौर पर हमने आज परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त किया है। प्रभु में बने रहें और उसकी निकटता में रहें ताकि आप भी उसके आशीषों को और अधिकाई से प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का।
यीशु से प्रार्थना करने का।